coming with Ajahn Kutir of Kripalana Prabhu and his wife Shyam Biharani and all family. Also his mother-in-law and all family. Srila Prabhu Bhaktivedanta Swami Maharaj, he has managed to come here. He made a very sweet and very soft platform, and certainly he has brought me here. So beautiful devotees. When I reach any destination, any bhajan kuti, like Kripalana Prabhu, I become overjoyed that how he has managed all this. I cannot express my overjoyed in any words. There are no words to express. So, we should try to fulfill the desire of Swamiji of combining together. Whether they will be of any section of Vaishnava, Swamiji, or the disciples of the Swamiji, or the god brothers of Swamiji, like Sridhar Maharaj, Pujyapad, Pujyapad Sri Maharaj, or anyone. If they are thinking that I am of Sri Chaitanya Mahaprabhu, I am the follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, or I am follower of Srila Rupa Goswami, and worshipping, meditating Sri Chaitanya Mahaprabhu, or meditating, worshipping and chanting Radha Krishna, Hare Krishna in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, whether he be any dog, mosquito, or anything, we should honor from the heart of our soul, and we should serve him, or we should help him. You should not say that you should not tell anything. Don't leave a lock and key here to any Vaishnava, because he will tell the bhakti of Krishna, the love of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I've seen from the beginning of ages and ages that without the help of Vaishnavas and Sadhu Sangha, anyone cannot have the mercies of Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu. Monkeys, even dogs of Shivananda Singh, Rishi, anyone who comes in the touch of Sadhu Sangha, bona fide Sadhu Sangha, he becomes pure like anything, and then he can honor them. Rishi in the Kirtan. Gurudev Kripa Bindu Diya Karai Ejase Srina Pekha Sinti Sakala Sahane Bal Diya Kara Nija Mani Shtuja Sakale Sanman Karite Sakati Dehanath Jathaya. Without the mercy of Gurudev or Sadhu Sangha, we cannot honor all. Vaishnava. So he is praying that, O Gurudev, give me such a power, such energy, that I may honor all Vaishnavas. Who are taking shelter in the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and serving Radha and Krishna. No envy, no bad name, no offense. If any so-called Vaishnava is doing so, we should try to tolerate. Not quarreling, not doing anything to them. Like Haridas Thakur. They were not devotees. They were demons, but yet he not called his Prabhu that punished them. He was saying, O Prabhu, excuse them. Like Prasad Maharaj. Like so many Vaishnavas. We should be had a tolerance. We should not do tit for tat. This is our not policy. This is the policy of Chanakya and demons. Tit for tat. Vaishnava tolerance. They know that Krishna is serving us. Gurudev is serving us. So we should try to honor each Vaishnava. Whether he be of any call, any section of Vaishnava. This is the problem. Guru is not sectarian. Never he will be. He knows that Tina, the peace, me, Tina, the Guru, the peace, we should not only try to speak all these things. You should establish in this story. Otherwise, you will be so-called Vaishnava. Bhakti is a very easy path. If you go to control Bhakti and Vaishnava, then you will like Putana. What is the meaning of Putana? Putana. Put means very sacred. Na means
no.
No. Not speaker is not sacred, but exposing outwardly that I am mother of Krishna. I am Yashoda. Exposing. Only to kill Krishna. So the devotees, so-called devotees, those who behave like this, outwardly being Vaishnava, but inward no Vaishnavata, no honor for any Vaishnava, then his life putana. They want to control, make so many rules and regulations on Vaishnavas for bhakti, but these rules will destroy themselves. As Putana was destroyed. So when to go? When to control Krishna and to kill Krishna? For the protection of Kans Maharaj. She was so called mother. We should not be like that. She should be as river, as Yashoda. She told that, oh, this demigod, goddess, is really the mother of Krishna. I am not so beautiful. I am not so qualified. Oh, you can say Krishna in your life. Yashoda Ma, taking his boy Krishna in her lap, and he was loving, kissing, and smelling the Krishna's head. In the meantime, milk given on pot, on fire. It began to flow and come. Overflow. And it was going to fire. Yashodama at once run there. The milk was thinking, I am not serving Krishna. Yashodama has so endless and boundaryless milk on her breast that Krishna can take it for 100,000 lakhs and koti but it will be not finished. And other hand, Krishna's stomach is so big that Krishna will take the milk of Yashodama, but it will not be empty. So I am saying that I have no chance to serve Krishna, because Krishna is always drinking the milk of Yashodama, and Yashodama will not be. And so what to do? If I am not serving Krishna, then I should go to fire. I will be fine. No use of keeping life. Devotee thinks like that. If I am not serving Vaishnavas, I am not serving Gurudev, I am not serving conjugal, I am not serving Gaur Nityananda Prabhu, Gadadhar Prabhu, then I must die. I have no right to keep my life thinking this milk was going to suicide in fire. Yashodama saw from very distance, no, don't go to fire, don't suicide. I'm what at once coming, giving up Krishna there to save you, and I will serve by milk you to Krishna. My English is not perfect, so I'm telling here and there, but I think that you are understanding. So Yashodama ran after Krishna. Thought that yet I am hungry, so I should take the milk. Time is over. Only very little.
I think one more program.
Oh, yeah. So I'm telling in 2 minutes. What to do? I want to. Then Krishna thought that my appetite is there, so I will give up just Maya, Ma. So he arounded his legs. So the stomach of Yashoda Maya like this, like monkeys. And with his full power of Purna Brahma, he utilized there. Putana wanted to be out of control of Krishna. And he has about 10,000 of 60, elephants, 60, power of
60,000
elephants power. But he could not
get rid of Krishna.
He did like this. Pushed so much, with so much power, but he could not. But here, Krishna has not given whole power, only a very sprinkle. But she could not get rid of that. But Maya Yashoda, Krishna took at that time, used the power of Supreme Personality of God there, whole power, energy, and caught hold of Yashoda. by mouth like this, by hands or by feet, nothing. Only mouth.
By hand.
But just for that all, up, sit down. By only one hand, up, sit down there. And Krishna fell to you in all power. And he was bound to sit. This is a miracle. So Yashoda is so liberal that she is helping other devotees to serve Krishna, leaving her service, and he gave opportunity others to serve. We should be like that. He is my Guru Dev, so I must serve him. I will give no chance to others. Yes. No? Gurudev is a Jagat Guru. Jagat Guru, you know? Jagat Guru. So, I will give chance to others. My Gurudev is my Gurudev, always. So, all should be given chance like this. This is Vaishnavata. This is what? Vaishnavata?
Vaishnavata.
The culture of Vaishnavata. Character of Vaishnava. So we must follow all these things and heart by not rule and regulation. Bhakti is not controlled by rules and regulations. If we will do, bhakti will answer it. Like, since he comes putana to Krishna, Krishna vanished away. He could not touch Krishna even. Krishna was not in her hand, but he thought that Krishna is hand, I will smash, I will do anything. But he could not. He thought that Krishna is in his hand, but Krishna is out of the hand. So did miracle Yogamaya. Yogamaya miracle. So we should try to follow all these things and gradually develop our Krishna. Gaur Pramana. I'm happy to meet all the people. They should know? No? They should go start to all.
सभी ब्राह्मण वर्ग और स्वामी जी महाराज के शिष्य तथा भक्त लोग, आप सभी को संस्था सेवाधाम की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि जो आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके और इस आज के सत्संग में उपस्थित होने के लिए यहाँ एकत्रित हुए आज हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात है कि मंदिर के प्रांगण में वृंदावन से श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा और श्री राधा कृष्ण का स्वयं जो भजन करने वाला है गीता भागवत रामायण वेद पुराण और धर्म शास्त्रों के प्रचारक और उन्हीं के अनुसार शुद्ध भक्ति रहस्य का जो है तो प्रचार करने वाला श्री स्वामी जी महाराज है तो आज हम सभी के प्रांगण में जो है तो पधारे हुए हैं। स्वामी जी महाराज को जैसे आप देख रहे हैं तो इनका पार्थिव शरीर ये शरीर जो है तो बिहार का है। स्वामी जी को 55 वर्ष हो गए हैं घर को छोड़े हुए और बिहार नगर की जो है तो बक्सर जिला के अंतर्गत स्वामी जी महाराज की जो है तो स्थान है जहाँ पर ये पूर्व पहले रहते थे। बक्सर जिला वो स्थान है जहाँ पर विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि जो है तो तप करके और महान शक्ति को जो है तो प्राप्त किया है। उसी सिद्ध आचरण स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा तारका जैसे दुष्ट कर्म करने वाली राक्षसियों का भी जो है तो संहार हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो है उसी सिद्ध आश्रम के मार्ग पर भगवती अहिल्या का भी जो है तो उद्धार हुआ है। स्वामी जी महाराज जो है तो श्री भक्ति प्रज्ञानंद केशव जी महाराज का शिष्य है और भारत वर्ष में तथा अपने गुरु जी महाराज की आज्ञा से न केवल भारत में ही परंतु सारा विश्व में धर्म की प्रचार और प्रसार हेतु जो है तो स्वामी जी महाराज बाहर निकले हुए हैं। स्वामी जी जो है तो श्री गौड़ीय वेदांत समिति का जो है तो वाइस प्रेसिडेंट तथा जनरल सेक्रेटरी भी है और केशव जी गौड़ीय मठ का जो है तो स्वामी जी अध्यक्ष है। अपने भक्तों तथा धर्म के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की आग्रह पर महाराज जी जो है तो विश्व भर में भक्ति का रस प्रचार और प्रसार हेतु जो है तो निकले हुए हैं। आज से तकरीबन एक महीना पहले मुझे श्रीमान इष्ट देव जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने फोन किया और बताया कि ऐसा एक महान आचार्य जो है तो वृंदावन से हलम देश में 10-11 दिन के लिए आ रहा है, अगर जो आप अपने मंदिर में एक दिन का समय जो है स्वामी जी महाराज को दे सकें तो कृपा होगा। हम लोगों का विचार हुआ कि जब ऐसे संत आते हैं रक्त बरसाने के लिए तो फिर हमारा तो यह सौभाग्य है कि हम अपने स्थान में अपने मंदिर के घर में स्वामी जी महाराज को जो है तो बुलाएं और उनसे भक्ति रस का जो है तो रसामृत को पाठ करें। इन्हीं वार्तालाप के दौरान जो है तो आज स्वामी जी महाराज जो है तो मंदिर के पवित्र प्रांगण में जो है तो पधारे हुए हैं। हालांकि ये दुख की बात है कि ऐसे संत के दर्शन और साथ साथ उनके मुख से जो व्याख्यान का विषय है वो हमारे यहाँ एक ही दिन हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि एक दिन के बजाय आप 3-4 दिन तक मंदिर ले लें और पूरा कार्यक्रम जो है तो यहाँ पर ही आयोजित करें, परंतु क्योंकि स्वामी जी महाराज के शिष्य जो है तो पहले से ही प्रोग्राम अन्यत्र बना चुके थे इसलिए जो है तो 3-4 दिन का प्रोग्राम का व्यवस्था यहाँ पर न हो पाया, परंतु फिर भी आज स्वामी जी जो है पधारे हुए हैं और क्योंकि समय ज्यादा निकल चुका है इसलिए और न बोलते हुए आइए और स्वामी जी महाराज से हम लोग अनुरोध करें कि भगवान की जिस अमृतमय भक्ति रस में डूबने के लिए तथा जिस अमृतमय धारा में बहने के लिए हम और आप सभी यहाँ आए हुए हैं, महाराज जी जो अपने अमृतमय वाणी से भगवान की जो भक्ति रस है उसका जो है तो संचार यहाँ पर करें। आइए अपने हाथ को हम जोड़ लें और प्रार्थना करें। ओम नमस्ते विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायक पत्रनेत्रं येन तया भारततैलपुरं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम्। परम पूज्य व्यासि
एक मिनट दो मिनट महामंत्र का उच्चारण करतेमिरांध्यालंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम गौरत्तिषे गुरवे गौरचन्दाय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। राम राम। आज बहुत दिनों के बाद में हिंदी भाषा में मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। यहाँ के निवासियों के लिए शायद समझ में न आए जो डिब्बोटी यहाँ के हैं, किंतु मैं समझता हूँ कि पीछे से इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर और आप लोगों को बतला दिया जाएगा, किंतु जो हिंदी जानते हैं उनके लिए अभी बोल रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फॉर सो मेनी डेज, टुडे आई वांट टू स्पीक सम हिंदी बिकॉज यर ऑडियंस आर नोइंग हिंदी। इट विल बी ट्रांसलेटेड देयर आफ्टर। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं हिंदी भाषा में कुछ आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। वैसे मैं भारत की बहुत सी भाषाओं को जैसे संस्कृत, हिंदी, बंगला, उड़िया, असामी, बहुत सी भाषाओं को बोल सकता हूँ। तो आज बड़ी खुशी है कि मैं अपनी मातृभाषा जिसको कहिए, जिसमें मैं जन्म लिया, उसकी भाषा में मैं आज कुछ बोलने जा रहा हूँ। हम लोगों को समझना चाहिए, तुलसी जी ने, तुलसीदास जी का नाम आप जरूर जानते होंगे यदि हिंदी जानते हैं। श्रुति सिद्धांत यह है, उर्गारी भजिए राम सब काज विचारी, भजिए राम सब काज विचारी, भले ही संसार के सब काम छूट जाएं, कोई इसमें हानि नहीं होगी यदि राम का भजन कर लिया, कृष्ण का भजन कर लिया। और जगत के समस्त वस्तुओं को आपने प्राप्त कर लिए, रावण जैसा सोने का लंका, हिरण्यकश्यप जैसा आयु, किसी के हाथ से नहीं मरेंगे, देवताओं को, यहां तक कि ब्रह्मा को भी उसने अपने अधीन कर लिया था, किसी के द्वारा मरेगा नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता, वह आकाश में नहीं मरेगा, पाताल में नहीं मरेगा, कहीं भी नहीं मरेगा, किसी के द्वारा नहीं मरेगा जो ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। ऐसा वैभव भी हम लोग पा करके यदि कृष्ण का भजन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो जीवन हमारा व्यर्थ गया। समस्त शास्त्र यही कहते हैं, गीता, भागवत, रामायण, पुराण, सबका यही एकमात्र तात्पर्य सार है कि भगवान का यदि भजन हो गया तो तब सब कुछ हो गया, और भगवान का भजन नहीं किया तो जीवन बेकार का पशुओं की भांति चला गया। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, यदि धर्म नहीं है तो हम पशु, और कैसे पशु, बिना सिंह और बिना पूंछ के हम लोग ऐसे जानवर है यदि भगवत भजन नहीं किया, और भगवत भजन किया तो सगरी जैसी, विदुरानी जैसी, कुछ भी नहीं है तभी संसार का सबसे सिरमौर बन जाए। हनुमान बांदर होकर के भी जगत के पूज्य हैं, किस लिए, सब समय उनके रोम रोम में राम है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है उनका जहां पर राम राम से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए जगत के बंदनीय है। वैसे बंदरों का मुख देने से कोई भी चीज सवेरे से शाम तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगी, और जीवन का दुर्भाग्य है, यात्रा नष्ट हो जाती है बंदरों का मुख देखने से, विशेष करके काले बंदरों का। किंतु हनुमान जी का स्मरण करते ही वह विश्व का बंदनीय बन जाता है। राम नाम को अंक है सब साधन है, अंक एक नहीं, अंक नहीं दशगुण। यदि एक लिखा गया और उसके बाद में एक जीरो दिया तो दस बन गया, और एक जीरो दिया तो एक सौ बन गया, वो दस गुना बढ़ता चला जाएगा, और लाख जीरो रख करके एक को हटा दीजिए तो कुछ नहीं रहा। समझ रहे हैं शायद, द नेम ऑफ द कृष्ण इज लाइक वन एंड ऑल अदर प्रैक्टिसेस इज वेरी जो इज लाइक जीरो। If one is in left and zero is given, then it will go 10 times. If 10 again, more 10 times. And if left zero as there, but not one, then zero. इसलिए राम नाम कृष्ण नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे। यदि भगवत भजन किया तो जीवन सार्थक हुआ, नहीं तो बेकार का जीवन है, पशुओं से भी गया पीता है। पशु भी खाते पीते हैं, उनको भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, ये सभी चीज पशुओं में है जो हमारे अंदर में है। यदि भगवत भजन नहीं रहा तो हम उनसे गए बीते हो गए, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, उनके भी लड़के होते हैं, हमारे भी लड़के हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी भय करते हैं जब हमको कोई मार न डाले, हमको भी ऐसा ही होता है। तो फर्क रहा कहां, अंतर कहां रहा? केवल भगवत भजन का अंतर है। यदि अपने को हम जान करके जो मैं कृष्ण का सेवक हूं, राम का सेवक हूं, और जान करके विश्व से चला गया तो उसका जीवन सार्थक हुआ। और यदि ऐसा नहीं समझ सका तो समझो कि हम गाय बैल और पशुओं में गधे से भी गए हैं। पशुओं में सबसे बड़ा कौन पशु सबसे अज्ञानी है? गधा। हम वैसे ही खर गधे हैं, कोई ज्ञान नहीं। उसके पीठ पर सब ला दो किंतु वो कुछ टेस्ट नहीं करेगा, न कपड़ा पहन सकता है, और उसके पीठ पर घी दो दही मक्खन सब लाद दो किंतु वो नहीं खाएगा, वो केवल धो करके ले जाएगा, गंदी चीजों को धो करके ले जाता है, कुछ खुद भी नहीं। ऐसे गधे जैसे हम लोग हैं। यदि भगवत भजन नहीं किया, हम लोगों को समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने भागवत का सार लेकर, गीता का सार लेकर, वेदों का सार लेकर ये रामायण लिखी। बहुत सारों साल जो हिंदी नहीं कुछ भी जानता तो भी वो रामायण को वो समझ सकता है। मैं समझता हूं यहां पर भी कभी कभी राम की कथा होती होगी, रामायण की कथा होगी। तुलसीदास तो उन्होंने लिखा है, सुत सिद्धांत यह है, उरुगारी भजिए राम सब काज बीता। हमारे काम और सब जगत में बिगड़ जाए कोई हर्ज नहीं, भगवान का भजन करो, और नहीं तो जीवन बेकार का जाएगा। इसलिए उन्होंने 9 उदाहरण दिए। उदाहरण किया दिया, कमठ पीठ बरु जाम ही बारा। खरगोश को आप जानते हैं, कमठ को जानते हैं ना, कछुआ, कछुआ जानते हैं आप लोग ना, कछुआ के खाल पर बाल केश उग जाए, ये संभव हो सकता है? ये संभव है? नहीं होता कभी। तो अभी हम मानते हैं कि खरगोश उसके कमट के कछुए के ऊपर में, पीठ के ऊपर में केस उग रहा है, ये संभव है, ये मान लेता हूं मैं। और बंध्या सुत बरु का ही मारा, ये भी संभव है कि बंध्या को बाज की स्त्री को पुत्र हो गया और किसी ने उसको मार डाला, ये भी संभव है कि बांझ के लड़के को मार दिया। अरे लड़का तो उसका है ही नहीं है, तो उसका लड़का कहां से होगा, कौन मारेगा? किंतु इसको भी हम मान लेते हैं कि यह भी संभव पर हो सकता है। फूल ही नबजू अरु बुजू फूला, आकाश में बहुत से फूल खिल जाए, ये संभव हो सकता है? आकाश में तो कोई आधार ही नहीं है, वहां पर फूल कैसे खिल सकता है? देर शुड बी नो, देर विल बी नो फ्लावर्स इन स्काई, बट ये चीज कैन बी पॉलिटिक्स के लिए, यह संभव है, हो सके। और त्रिषा जाय बरु जल मृग जल पाना, आप मृग तृष्णा जानते होंगे। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? हवा खुद ताप से गर्म होने पर वो जल की भांति बहुत दूर से दिखता है और हिरण उसको पीने के लिए जाता है। जितने दूर वो चला जाता है सूरज की ताप से वो झुलसता जाता है, अंत में मरुभूमि में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ देता है, पानी कहीं नहीं मिलता। तो मृग तृष्णा के द्वारा पानी की प्यास बुझ जाए, ये भी संभव है। किंतु भगवान के भजन के बिना कभी भी किसी की तृष्णा दूर नहीं हो सकती, कभी वो उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। अंधकार पर रवि निशावे, अंधकार सूर्य को ढक सकता है, कभी नहीं होता, किंतु तभी तुलसीदास जी माने कि हाँ हो सकता है। यह अंधकार ने सूर्य को ढक लिया। हिमते अनल प्रगट बरु हो, बर्फ से पानी नहीं होता, बर्फ से आग नहीं पैदा होता, किंतु इसको भी हम मान लेते हैं तर्क के लिए कि बर्फ से आग पैदा होती है, ये कभी नहीं होता, तभी मान लेते हैं। बारी मथे बरु हो ये धृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अबे। तुलसीदास जी कह रहे हैं बारी मथे बरु हो, पानी को मंथन करने से भले ही घी पैदा हो जाए, पानी को मथने से, दूध को मथने से घी होता है, पानी को मथने से लाख जन्म में भी उसका मंथन किया जाए उसे घी नहीं निकलेगा, तभी हम मान लेते हैं कि हो सकता है। और रास्ते का जो धूल है उसको पीसने से भले ही तेल निकल जाए, यह कभी संभव नहीं। धूल को या रेती को पीसने से तेल नहीं आएगा, वो तो सरसों हो तिल हो तो उससे तेल निकल सकता है, किंतु यह भी संभव हम मान लेते हैं। किंतु दिन हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत पे, किंतु ये सब होने पर भी बिना के हरि भजन के कोई भी भव सागर को पार कर लेगा वो जन्म और मरण के इस भव सागर को कभी नहीं कर सकता, ये कभी मैं नहीं मान सकता। इसलिए हमारे जितने भी पुराण शास्त्र वेद उपनिषद भागवत पुराण गीता इत्यादि सभी यही कहते हैं कि भगवान का भजन करना जरूर इस जन्म, जिसने हरि भजन नहीं किया, कृष्ण का राम का भजन नहीं किया, उनका जन्म व्यर्थ है। मैं आप लोगों को पहले बतलाना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों का यह निचोड़ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसको समझना चाहिए। इसको मैं सब जाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत आप लोगों के सामने करता हूं। मुझे यदि यहाँ पर यदि श्रोता अधिक रहते और मैं यहाँ पर 7 दिन भी यदि कुछ प्रवचन करता तो मैं समझता ये कुछ कुछ विचार अपना प्रकट कर सकता था। 1 घंटे में 1 दिन में ये तो भूमिका बांधने नहीं चली जाती। इसलिए यदि हम कभी पहले पीछे आएंगे मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि उस समय में 5-6 दिन के लिए मुझे समय दिया जाए तो कुछ अपने विचारों को प्रकट कर सकूं। रामायण में क्या चीज है, भागवत में क्या चीज है, गीता में क्या चीज है, इन चीजों को मैं बता रहा हूं। आज मैं श्रीमद् भागवत से जो मैंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं, इसके संबंध में एक भागवत का उपाख्यान आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूं। एक बेटा था और एक बाप था, दोनों में कुछ ठंड गई। आप लोग मेरी भाषा हिंदी की समझ रहे हैं, कितने आदमी समझ, जरा हाथ उठाएं तो। वाह बहुत बहुत, आई एम हैप्पी टू नो दिस, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप मेरी हिंदी को समझ रहे हैं, बहुत ठीक। और जो नहीं समझ रहे हैं, दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, वी विल ट्राई टू टेल दिस इन अवर मॉर्निंग क्लास। तो एक था बाप एक था बेटा, दोनों में ठन गई। बाप कहता था कि भगवान का नाम मत लो, विष्णु का नाम, राम का, कृष्ण का नाम मत लो, और बेटा कहता था कि मैं तो मर जाने पर भी भगवान का नाम जरूर लूंगा। बाप का नाम था हिरण्यकशिपु और बेटे का नाम प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज नाम था। 5 वर्ष का शिशु था, छोटा सा बच्चा, किंतु बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ था। प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण भले ही चले जाए किंतु हमारा बचन नहीं जाता। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई बरु बचन न जाई, भले ही प्राण चला जाए कोई बात नहीं, किंतु मैं भगवान का नाम जरूर लूंगा, चाहे मुझे बोटी बोटी कोई काट करके डाल दे, किंतु भगवान का मैं जरूर भजन करूंगा निश्चित रूप में। यह शरीर आपका है, इस पर आप जैसा ही व्यवहार कर सके हमें कोई ऐतराज नहीं, किंतु भगवान का नाम मैं नहीं छोड़ सकता। अरे वो मेरा शत्रु है, जब वो किसी का शत्रु नहीं है, भगवान सबका प्यारा है, समझने का फेर है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ स्कूल में पढ़ो। उनको स्कूल में भेज दिया। किनके स्कूल में भेजा? शुक्राचार्य के, शुक्र के आचार्य हैं, शुक्र के द्वारा ही जन्म होता है, शुक्र के द्वारा जन्म होता है, पिता के शुक्र से, माता की योनि में, ये माता के गर्भ से पुत्र का, कन्या का, ये सबका संतति का जन्म होता है, इसलिए उनको कहते हैं शुक्राचार्य, जो इस विषय को खूब अधिक जानते हैं, इस विषय में आचार्य हैं। वो चाहे तो मरा हुआ व्यक्ति को भी मंत्र से कर करके उनको जिला देंगे, ऐसा ही वो करते थे। हजारों जानों दैत्य मरे हुए हैं और पानी लिया उनके ऊपर में छीट दिया, कहे जग जाओ उठ जाओ, बस वो लोग उठ जाते थे। उनके स्कूल में भेजा, किंतु वो थे नहीं, उनके बेटे थे दो, उनका नाम था संडा मर्क। संड माने सांड, जानते हैं आप लोग, सांड बैल जैसा, वो इधर उधर खाता है, इधर उधर जाता है और इधर उधर घूमता रहता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, और सब समय गायों के पीछे पीछे और खाने के पीछे पीछे, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, वो ये चाहता है। इसलिए उसके आचार्य थे संडा मर्क, शुक्राचार्य के बेटे, उनके स्कूल में पढ़ने गया और उन्होंने कुछ दिनों तक उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में कहा कि इसको थोड़ा सा पढ़ा दिया, अब जाओ माता पिता को प्रणाम करो। वो घर में आकर के माता पिता को प्रणाम किया, मैया ने उसे श्रृंगार किया बच्चे को और पिताजी की गोदी में लेकर के दे दिया। पिताजी आज अपने बच्चे को दे करके ये पढ़ लिख करके आया है, बड़े प्रसन्न हुए और बोले बेटा स्कूल में तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा गया? तो कहते मैंने पढ़ा, बतलाऊं? मैंने तो यही पढ़ा, तत्सारु मन्ये असुर्य वज्र देहिनां सदात्म हित्वा समुद्विग्न धिया हित्वात्मपातम गृहमन्दकूपम यद हरिमाश्रये। उन्होंने कहा जो देखो भगवान का भजन करना ही सबसे उत्तम चीज है। यह गृह कैसा है, घर कैसा है? अंधकूप है। कैसा अंधकूप? जिस कुएं में पानी नहीं है, जिसके ईंटे बिखर करके नीचे चले गए हैं, पानी सूख गया है, और उसके किनारे में पीपल के पेड़ पौधे कुछ जगाए हैं और वो घासों से भर गया है। एक व्यक्ति जा रहा था कहीं जंगल में जा रहा, एक सिंह ने उसके ऊपर में आक्रमण किया और वो डर के मारे भागा बड़ी जोर से, देखता जब मेरा प्राण कैसे बचे, इसलिए वो कुआं देखा जो सूखा हुआ है, उसकी डालें ऊपर में है, पीपल के दो डालियां थी, उनको पकड़ करके नीचे झूल गया। बाघ आया, देखा जैसे वो तो थोड़ा सा नीचे चला गया है, उसको पकड़ नहीं पाया और वहीं पर पंजे मार करके और गुर्राने लगा, गर्जन करने लगा, यदि वो बाहर आता है तो उसको पकड़ करके खा जाएगा, और उन दो डालियों को पकड़ करके कुएं में झूल गया। ये देखा जब थक जाऊं तो नीचे देखा जो बड़े बड़े काले काले सर्प बिस्तर फोंस फोंस कर रहे थे ऐसे, यदि वो नीचे गया तो उसको डस लेंगे, वो मर जाएगा, ऊपर जाएगा तो बात खाएगा। इतने में उसने देखा जिस डाल को पकड़ करके वो झूल रहा है, उसको एक काला चूहा निकल करके और एक सफेद चूहा निकल करके उसको काटने लगे, कुतरने लगे, थोड़ी देर में वो नीचे जाएगा, वो बचेगा नहीं। इतने में उसने एक और चीज देखा, ऊपर की डाल में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा था और उसे मधु की एक एक बूंद टपक रही है। उसने जीभ बाहर किया मुख और उसको अपने मुख में ले लिया, अरे ओहो क्या अद्भुत मधुर मधुर मधुर, किंतु नहीं जानता है कि अभी नीचे जाने वाला है, सांप काटेगा मरेगा, ऊपर जाएगा बाघ खाएगा, ये नहीं जानता। वो चूहे क्या है, वो पीपल का दरख्त क्या है, पीपल का पेड़ हमारी आयु है, हमने पूर्व पूर्व जन्म में जो जो कर्म किया उसी के अनुसार में फल पाने के लिए वो उसी के सहारे हम जी रहे हैं। अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, ये दो डालियां हैं। और चूहे क्या है, एक दिन है और एक रात, समय आयु चलता जाता है। एक आदमी से पूछा, तुम्हारी आयु कितनी है? 100 वर्ष। वो बड़े आनंद से खुशी होकर के वो कहता है कि मैं 100 वर्ष का हूं। अरे 100 वर्ष तो आ गया, और कितनी आयु है ये समझो, 108 वर्ष की तो आयु चली गई, अब है कितना तू ये सब समझ। आयु सब चली गई, अब थोड़े से दिन आजकल में मरने वाले। तो इस तरह से ऊपर का मधु क्या है, दिन रात करते एक एक क्षण करते 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 हमारी आयु निकल रही है, एक दिन हमको जरूर मरना है। ऐसा जगत में कोई नहीं आया भगवान के अवतारों को छोड़कर के, उनको भक्तों को जो जगत में आकर के जन्म लिया नहीं मरा। जाता सही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मितस्त, जिसने जन्म लिया उसको अवश्य में वो मरना होगा, और जिसका जन्म हुआ उसको मरना पड़ेगा, और जो मर गया उसको क्या होगा, यदि भगवत भजन नहीं किया तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये इसी का नाम भवसागर है। भवसागर माने क्या, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम। मरना जन्मना फिर माता के गर्भ में आना फिर जन्मना फिर मरना, ऐसा ही लगा हुआ है कोटि कोटि वर्षों से, जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई तभी से, किंतु हम लोगों का अभी तक उद्धार नहीं हुआ। राम कृष्ण आए, सभी लोग आए, सब